سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے جیالے شفاقت خان، جو کہ عمران خان کے ٹائیگر ہیں، حال ہی میں وہ مل کر آئے ہیں پاکستان سے اور بہت کچھ اپنے ساتھ لائے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی ویلکم راجہ صاحب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم تمام سامعین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟
خان صاحب آج بڑے خوش ہیں کہ آپ کی حکومت چلی گئی ہے، اس لیے
میں کوئی بات سمجھ نہیں پایا جی، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا۔
میں نے کہا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی بڑی بڑی باروب آواز نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بن گئی اور آپ خوش ہو گئے ہیں۔
راجہ صاحب اصل میں میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب چلے گئے یا نون آ گئی ہے، خوش میں اس بات پر ہوں کہ منافقوں کی پہچان اچھی طرح ہو گئی ہے۔ جو لوٹے موٹے تھے نا، جو بکنے مکنے والے، جو پاکستان کے اندر غدار جن کو کہتے ہیں یا جن کو کہیں کہ بےمان لوگ، وہ سامنے آ گئے ہیں جی۔ جیسے بھی تھے نا، جس حالت میں بھی تھے، جس پارٹی سے بھی تھے، وہ سامنے آ چکے ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، ان کی ملک کے لیے کتنے وہ مخلص ہیں، یا اپنی قوم کے لیے کتنے مخلص ہیں، اپنی افواج کے لیے کتنے مخلص ہیں، اپنی قومی سلامتی کے لیے کتنے مخلص ہیں، ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور رہا مسئلہ جو آپ نے کہا جی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پرائم منسٹر دیکھے ہیں راجہ صاحب، اب 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے آئے چلے گئے، دنیا کے بھی دیکھے ہیں، پاکستان کے بھی دیکھے ہیں، مگر میں نے ایسا پرائم منسٹر پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہو کہ جیسے یہ پرائم منسٹر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، نواز شریف آتا تھا میں اس کو پرائم منسٹر مانتا تھا، برا تھا اچھا تھا وہ آتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ نواز شریف آیا اور پرائم منسٹر ہے۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک انگریز کی شکل میں آ کر کسی نے ہمارے سر پر کسی نے بٹھا دیا ہو، یا کوئی گورا بٹھا دیا ہو، ایسے لگا ہے جیسے پہلے 1800 کے لگ بھگ جو یہ انگریزوں کا دور تھا، تو اس دور میں جو آ کر جو انگریز آتے تھے ان کے اوپر ایک بٹھا دیتے تھے، وائس رائس جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا ایسے مجھے تو نظر آیا، مجھے اس میں وہ خوشبو نظر نہیں آئی کہ پرائم منسٹر ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پر جس طرح عبداللہ ریاض بیٹھا ہوا ہے؟
یار اب قسم خدا کی عبداللہ ریاض سے بھی بیچارہ گیا گزرا نظر آیا نا مجھے، وہ چلے اس کو پھر کسی نے تو بٹھایا ہوگا۔
پاکستان کے وزیر اعظم شیروانی پہن کر کتنے سمارٹ لگ رہے تھے، پپو لگ رہے تھے۔
راجہ صاحب میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح۔ جو جسم ہوتی ہے نا جی، وہ بہت بدصورت ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے جب روح نکلتی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں جو ہے اس کو لوگ اٹھاتے ہیں اور پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں یا جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بدبو نہ آئے، کیونکہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اصل خوبصورتی ہوتی ہے روح، جب تک روح اندر ہوتی ہے تو غربت ہو، امیری ہو، کسی حال میں بھی ہو، تو اس کا وہ ساتھ لوگ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی روح کی وجہ سے۔ جب اس کی چارجر ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے جی۔ تو یہ اس کا جو تھا نا، اس کی جو جسم پارٹی تو بہت سامنے سے بنی ہوئی تھی، بالکل ٹاش پاش ینگر بن کر آئے ہیں، کیپ بھی رکھی انہوں نے اور سب کچھ بھی رکھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ گواہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی نظر آئے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں رانگ ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو نظر آیا، میں آپ کو راجہ صاحب کھلے لفظ میں بتا دوں کہ میں نے عمران خان پر ایمان نہیں لایا، عمران خان میری طرح ایک گناہگار انسان ہے، وہ بھی ایک امت محمدیہ ہے اور میں بھی ایک امت محمدیہ ہوں۔
خان صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ بھی کہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ہر وقت گناہگار ہیں، یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟
راجہ صاحب گناہگار سے مراد میں یہ نہیں کہنا، یہ ایک لفظ آپ نے جو کہا اس پہ آج آپ جیت گئے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خطا کار ہیں ہم، مطلب کہ گناہگار سے مراد ہی ایک راجہ صاحب جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ایک عورت کی طرف ہماری ایک دفعہ آنکھ اٹھے دوبارہ اٹھے تو وہ زنا ہے، جب حدیث کہتی ہے تو وہ زنا ہے، تو آپ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ ہم کھانے کھا جاتے ہیں، کوئی ایسے کوئی سویٹ کھا جاتے ہیں، مطلب کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کسی انسان کا دل دکھ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایسی چیزوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نظریاتی سوچ جو پاکستان کے لیے رکھی ہوئی انہوں نے، اگر اس چیز کو دیکھے تو محمد علی جناح جو قائد اعظم جو بانی تھے، تو وہ کون سے کوئی جامعہ اسلامیات تھے جی، وہ بھی ایک سائیکالر قسم کے انسان تھے، एक अंग्रेज तरह की वो उनकी वो जिंदगी का मयार था। वो तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने कहा चले आपकी अक्सरियत है, मैं आपको एक तरफ बना देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी एक तारीख में चलाता हूँ कि एक तरफ आप हो जाए ताकि आपका हिंदुओं के साथ फटा ना बने। तो मतलब कहने का ये है कि इमरान खान जो है राजा साहब, उस इतना मकबूल होकर आया खुदा की कसम, जैसे वो ज्वालामुखी की एक मूवी है ना, उसकी माँ पर जुल्म करते हैं तो कहती है मेरा बेटा जब आएगा तो ज्वालामुखी बनकर आएगा। वो तो फिल्म की कहानी देखी है, लेकिन हकीकत में हमने अभी देखा है कि ये वाकई ज्वालामुखी बनकर आई, यानी कि एक ये आग का एक ऐसी चिंगारी बनकर आई है कि यकीन माने कि सबको राख कर दिया है, सारी सियासत को इसने बर्बाद कर दिया है जी, लोगों की सबकी सियासत ही खत्म हो गई है जी,
इमरान
कुछ छोड़ा ही नहीं
अपना
है
खान
उसे
साहब, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि जब
जी।
सबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास ताकत थी, कलम थी, तो उस वक्त
जी
उन्होंने
जी
ये जो बातें आप डिमांड कर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं फैसले किए, जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो उस अब क्या फ़ायदा इन चीज़ों का?
राजा साहब देखे, ये यहाँ की पॉलिटिशियन एक अजीब चीज है, इसको समझने के लिए टाइम लगता है। राजा साहब अभी इमरान खान ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ कि रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क जब इंसान लेता है तो उसके पीछे कुछ मरकात होते हैं, कुछ उसके लिए बरकात होते हैं, कुछ उसके लिए आने वाले हालात भी होते हैं उसका साथ देने के लिए। राजा साहब अभी जब इन लोगों ने गलती की है, अभी इन्होंने हुकूमत नहीं लेनी थी इमरान खान से, मैं ये साफ आपको कह दूं, इमरान खान को इन्होंने तंग नहीं करना था, ये खुद ब खुद जीत जाते। क्यों जीत जाते? कि लोगों को ये नहीं पता कि इमरान खान ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। इतने खराब थे, मुल्की हालात इतने नीचे जा चुके थे कि इमरान खान के बस की बात नहीं थी कि दोबारा वो इलेक्शन जीत पाता। खुदा की कसम इन्होंने जो हरकत की है, इमरान खान की तिजोरी में इन्होंने इलेक्शन दे दिया, आप तो दुनिया बाहर निकल आई कि यार ये कैसा शख्स है इमरान खान, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कर जो है ना वो लफ्ज वक्ती तौर पे तो उसके हक में नहीं था, वक्ती तौर पे तो उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसको तो नुकसान हुआ।
खान साहब तरह मैं सियासी सवाल कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जो है ना एक इस चीज़ को जो है ना स्टंट बनाने की कोशिश की है कि चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम अक्सरियत जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ उनको कोई बाहर निकाले, पहले जमात इस्लामी बाहर निकालती थी, अब इमरान खान साहब ने उस चीज़ को मैं तो कहता हूँ यूटिलाइज़ किया है।
नहीं राजा साहब, मैं इस चीज को, आपकी इस सवाल को जो है, मैं इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से आपको देता हूँ, क्योंकि हम दोनों दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और एक हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हक की बात करें। मैं देखिए राजा साहब, ये सही मानों में आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका को और कोई तकलीफ नहीं है, अमेरिका को ये तकलीफ है कि उसने पहले कहा कि मुझे यहाँ पर जो है बेस दिए जाए, यानी मैं रखता हूँ, मैं करता कुछ नहीं हूँ। देखिए जी, इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, और अमेरिका ने मांगे या नहीं मांगे उस पर साफी ने सवाल किया। देखिए सवाल ये है कि अमेरिकन की तरफ से ये सवाल किया गया, साफी जैसे आप मुझ पर सवाल कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि डैनिश मुझ पर सवाल करें, सवाल आपने जो मुझ पर किया
लेकिन
है मैं
खान
उसका
साहब
जवाब।
हमारी कोई प्लानिंग तो नहीं है ना?
नहीं, ये प्लानिंग के तहत आई है वो औरत, उस औरत ने आकर सवाल किया कि इमरान खान साहब आइंदा जुलाई हमारे अफगानिस्तान से जब अमेरिकन निकल चुके हैं तो आप हमें बताइए कि आप आइंदा के लिए क्या दोबारा अड्डे देने पड़े या जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, मतलब मैं कभी नहीं करूंगा। ये बात निकली आगे, उनको लगा बुरा। बात तो उनकी जो अमेरिकन की है वो तो उस दिन से शुरू हो गई थी जब इसने बाजवा ने कहा कि नो डू मोर, बात तो डू मोर तक, वो डू डू मोर जो चल रहा था उस वक्त से हमारी अमेरिका के साथ तो रंजिश चल रही थी। फिर उसके बाद जब वो ये जब यूक्रेन की बदकिस्मती से जंग होनी शुरू हुई, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल पसंद नहीं करता कि कहीं भी जंगे हों, क्योंकि इसलिए जंगे जंगे तबाही की तरफ लेके जाती हैं, जंगे जो है ना ये मजबूरी के तहत की जाती हैं, वरना जंग अच्छी चीज नहीं है। तो जब इनकी जंग आ गई यूक्रेन वाली, वहां से इमरान खान का जाना हो गया रशिया, ऑलरेडी हम चाइना के साथ खड़े हैं। देखिए हमें तनहा करना चाहता था अमेरिका, अगर हम अमेरिका के साथ पहले खड़े रहे, क्या किया उसने, किसके साथ क्या किया, छोड़े यूक्रेन के साथ क्या किया अमेरिका ने, यूक्रेन को कहाँ खड़ा कर दिया। आज दुनिया के ये छोटे छोटे मुल्क जो है
आप
यूरोप के,
इजाफा कर दे ना,
इनको
पाकिस्तान के लिए भी बहरी बेड़ा आया था, सातवां बेड़ा था, कौन सा था वो?
नहीं, वो भी मैं वजात कर देता हूँ, लेकिन ये बताएं कि ये डेनमार्क दुनिया का एक पीसफुल, जिसको जस्टिस में पहला नंबर मिला है पूरी दुनिया में, डेनमार्क एक इतने शरीफ और इतने पीसफुल लोग हैं, ये कहते हैं कि हम तो किसी की जंग भी नहीं देख सकते। इन बेचारों को भी रशिया ने धमकियां दी हैं। फिनलैंड एक आजिज मुल्क, उसको भी रशिया ने धमकियां दी हैं। किस लिए दी हैं? इसलिए दी हैं कि आप क्यों अमेरिका के साथ रखते हो। तो देखिए, हम तो यहाँ रशिया के बॉर्डर पे बैठे हैं ना जी, हम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना जी, हम कैसे मुकाबला करेंगे जी। तो ये जो जितना देखिए, मेरी बात सुनिए राजा साहब, ये अमेरिका इनको भी सबको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इनको समझ अभी आ गई है, ये समझदार है, मगर इनको भी तुला हुआ है कि वो सामने इनके किंग बना हुआ है। जब जिस पर अब यूक्रेन पे बनी है, कहाँ गए? अब हक तो बनता था ना कि नेटो का फिर यूक्रेन में जाकर बैठ जाते ना कि हम आ गए हैं यार, तेरे साथ झगड़ा करेंगे हम, तू मारेगा एटॉमिक तो हम भी आपको मारेंगे, या तो फिर ऐसे शेरों की तरह खड़ा हो जाता ना रशिया के साथ। क्या किया उसने? यूक्रेनी आज दर बदर घूम रहे हैं, यूक्रेनी रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, अमेरिका आज तू कहाँ है? अब उसको बतवाए अमेरिका को दे रहे हैं कि हमें बर्बाद करने वाले तो आप है। देखें राजा साहब, हमें ये बर्बाद करना
खान
चाहता था
साहब चले,
अमेरिका।
ये तो एक बड़ी गेम है। अब देखते हैं ना कि इमरान खान साहब को 4.5 साल की हुकूमत मिली, हम यहाँ ओवरसीज हैं। खान साहब, अगर मैं
जी
आपसे सवाल करूँ, एज ए ओवरसीज मैं आपसे कहूँ, आपने बड़ी फाइट की हकूक लेने के लिए, हक लेने के लिए, आप जेल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कहे तो मैं मानने के लिए तैयार, आप जेन्युइन इमरान खान साथ साथ हैं, उनकी पॉलिसी को आप फॉलो करते हैं। 4.5 साल में जिस मुल्क में हम रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं, मैं सारे ओवरसीज की बात नहीं करूंगा, मैं डेनमार्क की बात करूंगा, ओवरसीज को क्या मिला है हमें?
राजा साहब, मुझे इस आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा कि वाकई कि ये सवाल जो है आपका, ये बड़ा एक नाजुक सा सवाल किया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं राजा साहब, ओवरसीज के लिए उसने एक जो कदम उठाया कि हमें एक जो वोट वाला हक मिला, पहली बात तो ये है कि ये हमारा हक बनता था, ये किसी, ये हर प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए था, ये जरूरी नहीं कि इमरान खान करता, ये कोई भी होता वो करता। नंबर दो राजा साहब, जिस जिस मकाम पे इमरान खान खड़ा था, मैं आपको बता दूं कि ये सारे उसके साथ जो लोग थे कुछ उससे वजारते मांगना चाहते थे। अब देखें लास्ट टाइम पे भी इमरान खान को ब्लैक किया गया, आपको तो पता है कि अच्छी तरह कि कभी इधर कभी उधर खान को ये कहा गया जी कि हम आपको बताएंगे कि आपके साथ हैं या नहीं है। अगर यहाँ से हमारे साथ तो देखें आपस में काफ लीग ने भी आखिर टाइम पे धोखा किया है, हालांकि मैंने भरपूर मजम्मत भी की है, मैंने उनको गाली गलौज भी किया है नवाज शरीफ को कि आपके बेटों ने गलत किया है, उनकी बेटियों को गालियां दी हैं कि क्यों आपने परवेज इलाही साहब पर तशद्दुद किया, मगर जो हकीकी बात है वो ये है कि चौधरी बिरादरान ने जी साथ छोड़ा है जी। देखें इमरान खान को ब्लैक करना शुरू कर दिया कि हमें आप अगर चीफ मिनिस्टर की सीट देंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर पंजाब चीफ मिनिस्टर की सीट नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे, हम वहां जाएंगे। ये इन्होंने चौधरी बरदरान की सियासत खुदा की कसम बर्बाद हो गई सिर्फ इसी बात पर, क्योंकि खत्म हो गई है, मैं तो कहता हूँ खत्म हो चुकी है। इसलिए खत्म हो चुकी है कि सच कड़वा होता है, हालांकि चौधरी शौकत मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और वो हमेशा हम भाई रहेंगे। जहां तक हमारी अनाक की बात आएगी तो मैं चौधरी शौकत के साथ उसी तरह खड़ा होऊंगा कि जिस तरह एक सका भाई खड़ा होता है, मगर जो सच है वो छुपता नहीं है। चौधरी बिरादरान ने एक जगह जब खड़े थे तो खड़े थे, बीच में वो जो कुछ कहते रहे वो भी मानते रहे, अब वो चीफ मिनिस्टर की सीट मांग रहे हैं बुजदार को हटा के, तो देखिए ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। या तो फिर इत्यादि हैं तो हमारे साथ आप खड़े हो जाए, स्टैंड ले लें, खान जब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जा रहे हैं, तो वो तो वही बात। जैसे कश्मीर के वजीर आजम ने एकदम उसने कहा जी कि मैं गया, जहाँ सौदे होते हैं यहाँ इंसान बिकते हैं, यहाँ हर चीज बिकती है, उसने जो है वो कांच वाले बाबा की गजल उसने सुना के उठा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि राजा साहब, इमरान खान को शुरू दिन से इन आराम से बैठने दिया ही नहीं, आज पता चल रहा है कि बुस्तार जो था उसको क्यों, मतलब कि इमरान खान ने हटाना चाहता था, और ये पूरा ग्रुप क्यों उसके खिलाफ 40 लोगों का जो खड़ा हुआ, ये रियाज जैसे लोटे, ये जो जिस तरह के ये लोग थे, ये तरीन नहीं मानता था बुजदार को, जिसकी वजह से वो अड़ा रहा, जिसकी वजह से तरीन और ये लोग हटे हैं। क्यों हटे हैं? कि ये गलत काम करवाना चाहते थे, वो नहीं मानता था। तो मतलब कि ये रियल पीटीआई के लोग नहीं थे। रियल पीटीआई के वो लोग होते हैं कि मसलन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इमरान खान साहब मुझे सलाम भी नहीं कर रहा है, मुझे एक धक्का दे के बाहर फेंक दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इमरान खान को छोड़ दूँ। हो सकता है उसको आधे घंटे बाद समझ आ जाए कि यार मैं क्या किया, मैंने गलत कर दिया। ये लोग रियल है ही नहीं थे, जो निकले ये रियल नहीं थे। और यकीन माने राजा साहब कि बड़े अफसोस की बात है कि अक्ल वालों को तो ये सोचना चाहिए कि इमरान खान एक अकेला एक पर्ले में बैठा है और एक पर्ले में ये सारी दुनिया बैठ गई, यहाँ तक कि ये बैठ के भी फिर भी इमरान खान बारी था, फिर इतना किया कि यहाँ जो गद्दार थे उनको खरीदना शुरू किया। तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि इतनी कोशिश के बावजूद एक अकेले शक के साथ ये फिर भी नून लीग पीपल पार्टी और ये लोग नहीं लड़ पाए, जो सदियों से माँ बहने एक दूसरे की याद करते थे, जो मुतरमा बेनजीर भुट्टो साहिब शहीद के फोटो फेंकते थे ऊपर से जादों से नंगे फोटो फेंकते थे, और फिर उसके अलावा जो कहता था जरदारी कि मैं
तो खान साहब एक दूसरे को माफ कर देना इस्लाम में अच्छा नहीं है, एक दूसरे को माफ कर देना गलतियां एक दूसरे की,
और गलतियां तो माफ करेंगे जो पैसे आवाम के वो कौन माफ करने वाले। आए इस्लाम का ये जो बहुत बड़ा आलमदार बैठा है मौलाना फजलू, इससे पूछे ना कि मौलाना फजल तू मुझे बता ना कि यानी अल्लाह और उसके रसूल का जो लोगों का पैसा है उसको तो ये माफ करने की अकदार ही नहीं, इनको इनको किसने अख्तियार दिया किसी के पैसे माफ करने का। जी
खान साहब बैलेंस करते हैं, खान साहब साथ साथ चलते हैं बराबर बराबर। खान साहब जब हुकूमत बनी 2018 में इमरान खान साहब की, तो तरीन साहब जब जहाज पर वो बंदे बैठा के लाते थे बनी गला में लाइन में खड़े करके वो मफरल पीटीआई के डालते थे, खान साहब क्या वो सही था?
राजा साहब पहली बात तो ये है कि जो खान साहब के पास तरीन साहब ने बंदे लाए हैं वो आजाद लाए हैं, ठीक है। देखे खान साहब
क्या
के
वो
पास...
तरीका कार ठीक को मुफ्त फीस भी दिलाए थे वो?
मेरी बात तो सुने ना राजा साहब, अब आपने सवाल किया बैलेंस बराबर करते हैं तो सुन ले, क्या राणा सनोला को लेके आया खान साहब, क्या असन इकबाल को लेके आया, या क्या चौधरी ये जो बेलत और बाकी जो थे ये जो चौधरी है अपना क्या नाम है जी वजीर दाखला भी रहे हैं यार
चले ठीक है आपका आ गया पॉइंट के सारे आजाद उम्मीदवार थे,
ये आजाद लेके आए और लोग खुद आना चाहते थे तो आए जी, लेकिन यहाँ तो एक पार्टी के मुंतखब होकर जो आए हैं पीपल पीटीआई से मुंतखब होकर आए हैं, पीटीआई की वजह से लोगों ने उनको वोट दिया है, ये इनको कैसे हक मिलता है जी कि ये खुद गद्दारी करके और जा रहे हैं।
मैं आपकी बात काटूंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बने वो पीटीआई के मेंबरों से नहीं बने।
मैं देखे मेरी बात आप मेरी बात मुझे ये बैलेंस ठीक है, मैं मानता हूँ कि पीटीआई का वोट उसको नहीं पड़ा, यही आप कहना चाहते है ना?
जी जी।
तो मुझे ये बताइए ना राजा साहब, एक तरफ 174 खड़े हुए हैं, एक तरफ इमरान खान 184 के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ ये 57 पे खड़े हैं, 157 पे 56 पे खड़े हैं मसलन, तो मुझे बताएं कि ये बैलेंस कैसे बराबर किया गया है? जो हमारे तोड़े हैं इन्होंने, जो मुनारे कुए हैं, तो वो जब
आप
काम होंगे तो
आपके इतादी तोड़े हैं, आप ये कहें कि आपके इतादी तोड़े हैं,
टूटे हैं जी। पहले तो इत्यादियों ने हमारे खंजर लगाया जी, हमारी गर्दन में खंजर उन्होंने इत्यादियों ने मारा है जी, हम तो साफ कहते हैं जी कि हमें तो इत्यादियों ने नुकसान पहुंचाया जी, क्योंकि हमें तो महंगा ने नुकसान पहुंचाया जी।
इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे तो इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़ नहीं देनी चाहिए थी, इलेक्शन नहीं का ऐलान कर देते।
देखे जी इमरान खान ने अब क्या किया, इमरान खान ने कहां पत्थर फेंकने दिया जी, इमरान खान ने कहां लोगों को रोड पे आने दिया जी, इमरान खान ने बिल्कुल खामोशी से उठ के इस्तीफा दे के चला गया मुसाफी होकर, और क्या करता तो मुसाफी होने का क्या मतलब है?
खामोशी से नहीं गए खान साहब, खामोशी से नहीं गए
राजा साहब,
पूरी आंधी में पांव मार के गए हैं, पूरी आंधी में पांव मार के गए हैं।
मेरी बात सुने राजा साहब, देखे मेरी बात सुने राजा साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ में ये फर्क है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी अपने लोगों को मिलने जा रहा है और नवाज शरीफ ने उनके साथ क्या किया, इमरान खान एक पूरी हुकूमत इसके खिलाफ, नवाज शरीफ ने क्या किया हमारे पास अटक पुल के पास, आपको मालूम है कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, जब वजीर आला सराज से पुख्तनख्वा से जब आए तो हरो के पास कितने हमारे बंदों को मारा गया, कितने लोगों को मारा गया जी, गोलियां मारी गई हैं जी, हमें उस वक्त भी तो हम मिलने जा रहे थे ना अपने कायद से, तो क्यों हमारे लोगों को गोलियां चलाई गई हैं जी, क्यों हमें फिर जाकर दोबारा पड़ाव करना पड़ा, फिर वजीर दाखला जो टैक्सला वाले यार नाम लेने चौधरी निसार ने क्यों बीच में आके सुलह करवाया जी, ठीक है आप जाएं जी हम आपको नहीं रोकना चाहते यार, हमें रोका गया, क्यों रोका गया, हमारा क्या हक नहीं था, इसने कहीं भी रोका है इमरान खान ने, कहीं डंडा चलाया है, कहीं इसने किसी को कोई तकलीफ दी है, खामोशी से उसने कहा कि ये लो इस्तीफा मैं गया।
नहीं खान साहब, मैं ये नहीं मानता आपकी बात, खामोशी से उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पूरा मुकाबला किया है।
राजा साहब मुकाबला तो जहरी बात है, दो प्लेयर
जब अक्सरियत नहीं थी तो। खान साहब चले मैं आता हूँ, खान साहब आप इसमें से ढूंढते हैं चीज़, चूँकि आप एनालाइज करते रहते हैं, क्या इमरान खान साहब को सरवर खान ने या अपना गवर्नर ने और या शाह महमूद कुरैशी साहब ने या चंद लोगों ने या मैं चौधरी बिरादरान का भी नाम लेता हूँ, क्या इमरान खान को इन लोगों की वजह से नुकसान नहीं पहुँचा?
बिल्कुल पहुँचा है जी, चौधरी सरवर की तरफ से पहुँचा है जी। पीआईए को बदनाम करने वाला चौधरी सरवर है, उसको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने बेवकूफ़ी की कि जो बयान दिया कि हमारे पास पायलट जो है दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त को भी उसने बदनाम किया। इमरान खान से उसने पूछा भी नहीं, उसने वजीर आला से पूछा भी नहीं, और उसने एक ये ऐसा बयान दिया कि जो हमारी मुल्क की सालमियत को नुकसान दिया जी। चौधरी सरवर ने बिल्कुल दिया है जी, हम इसके साथ हम तो एग्री
क्या
हैं जी।
इमरान खान साहब ने उनको निकाला?
देखे जी मेरी बात सुनिए, जब उससे ये बयान हुआ तो उसके बयान के बाद खान साहब की इसके ऊपर बिल्कुल नजर थी। जब हमने इसको गवर्नर राज से हटाया तो इसके साथ हमने क्या किया, गवर्नर राज इसको हमने जलील करके निकाला कि चल दफा हो, तेरी ये औकात थी। देखे जब खान साहब किसी के खिलाफ प्रूफ न पकड़े तो शाह महमूद कुरैशी अगर जो हमारा आने वाला इमरान खान के पास दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहो या पार्टी चेयरमैन कहो, उस पर भी खान यकीन नहीं करते, उस पर भी नहीं करते। खान यकीन करते हैं, देखते हैं, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, उसके पीछे उसके मेरे जैसे जाले लगे रहते हैं जो इमरान खान की शहदाई होते हैं, वो सारी रिपोर्ट देते रहते हैं कि जी ये बंदा कितना कर रहा है, ये कितना मुखलिस है और इसके इरादे क्या है और आइंदा ये क्या बनना चाहता है, आइंदा इसकी क्या सोच है, तो वो सारी बातें खुफिया तरीके से हमारी पहुंचती रहती हैं।
खान साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब आते हैं कि वर्कर को जो होता है नवाजा जाता है टाइम पर, वर्कर तो होता है जिसे कहते हैं ना कि शमा जलती है, परवाने को पता ही नहीं होता, उसे पता, उसे अगर पता हो कि मैं जल जाऊंगा वो जाएगा
नहीं, नहीं।
परवाने होते हैं, लीडर को चाहने वाले परवाने होते हैं, आप जैसे बेशुमार लाखों परवाने हैं जो इमरान खान को चाहते हैं। खान साहब अगर मैं आपकी तरफ जाऊँ, आप पाकिस्तान गए हुए थे पिछले दिनों, अभी काफ़ी टाइम आप रह कर आए हैं, ओवरसीज का कन्वेंशन, पीटीआई ओवरसीज का कन्वेंशन हुआ, तो आपके साथ क्या हुआ?
राजा साहब मेरे ख्याल से मैं तो झूठ नहीं कहता, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि नजरियाती उस वक्त मैं मानूंगा पीटीआई के यहाँ लोगों को जो आला अधिकारी हैं कि वो साबित मुझे करके देंगे कि हम वाकई पीटीआई के हैं। पीटीआई के लोगों की मैं आपको आज बात बता दूं कि पीटीआई क्या है और पीटीआई किसको कहते हैं, क्योंकि हमेशा पीटीआई पीटीआई लोग कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के बारे में मैं आपको बता दूं, पीटीआई एक कुर्बानी का नाम है, क्योंकि इंसाफ करने वाले लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उनमें वो जो इंसाफ के लिए खड़े होते हैं उनका पहला मिशन ये होना चाहिए। हमारे लीडर जो इमरान खान है उसका मिशन ये नहीं है कि मुझे लोग दुनिया में कहें कि इमरान खान, वो अपना नाम पैदा कर चुका है करेक्टर के दौर में, अगर और करना चाहते थे तो और भी कर लेते। उसकी वाइफ एक अमीर औरत थी, एक अच्छा शहरी था, एक पढ़ा लिखा अच्छे घराने से तलाक रखने वाला नौजवान था। खान के साथ वो ही चलेगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए करेगा। मैं आज आपको वाज़े तौर पे कह दूं, खान एक अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो कुछ कर रहा है वो अपना नाम पैदा नहीं कर रहा। अगर ये करता तो खान साहब के साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग आने को तैयार थे। खान कहता है कि बिल्कुल अपनी कौम के लिए मुखलिस है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस है। जिस वक्त इसके खान के वर्कर अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये जहां जाएंगे इनकी इज्जत होगी। आज दिन तक ये सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे लोग किस पता नहीं गलतफहमी का शिकार है, मुझे ये मालूम नहीं। मुझे ये एक बात बता दे राजा साहब, मैं पठान हूं तो क्या कोई चौधरी मेरे घर खाना भेजता है, या मैं पठान हूं तो किसी चौधरी के घर खाना भेजता हूँ? कल मुझे ये सिर्फ इतना पता चला है कि जब तकरीर कर रहा था उमर रियाज, हालांकि मेरे बारे में उसने बुरा भला भी लिखा था, लेकिन मैं अल्लाह के दिल से कह रहा हूँ, खुदा की कसम रोजा रखा है कि उमर रियाज की कदर मेरे दिल में कल थोड़ी सी पैदा हुई है जब उमर रियाज ने बयान किया, चाहे लिख कर किया, लेकिन उमर रियाज की जो कैफियत थी,
लीडर नजर आया,
यानी मुझे कैफियत नजर आई कि नहीं उमर बेवकूफ हो सकता है लेकिन मुखलिस जरूर है, उमर जज्बाती हो सकता है लेकिन उमर के दिल में खान की कदर है, उमर के दिल में दर्द है, उमर मुनाफिक नहीं है। मगर बीच में मैं कहीं कहीं, और इमरान महबूब को भी मैंने देखा सही चल रहा था, मगर मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊं, कुछ लोग हैं वो उसी तरह अकड़े हुए हैं, और अकड़े हुए लोगों की इज्जत नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर आसमान की तरफ थूकता है ना तो उसके मुंह पे थूक आता है। मैं ये आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं, और मैं इंशाल्लाह ये कंप्लेंट पूरी लिखूंगा भी, और मैं आपको बताऊंगा उसका जवाब भी आएगा।
और सवाल आपसे करने में बक करूंगा, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आपको तकरीर करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला, बल्कि आपने जबरदस्ती
ली। खींच के की है जी, मैंने खींच 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 की है जी, क्योंकि मुझे वहां पर जो है, मैं स्टेज पर मुझे वीडियो बनाने के लिए भी एक बार साकिब ने कहा कि आप उधर बनाए, मैंने कहा कोई आपको मसला है, वो रिकॉर्डिंग में भी बात, मैंने कहा कि आपको
नाम ना लें किसी का, वैसे बात
नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने कहा है, साकिब ने साफ कहा है कि इस फिल्म क्यों बना रहे हैं, मैंने कहा क्या कोई आपको मसला है, आखिर नहीं मुझे मसला नहीं, जरा थोड़ा इधर कर ले, मैंने कहा मैं तो भाई सीनियर वर्कर हूँ, मैं तो आया हूँ, और मैं तो अमीर शाह नकवी के कहने पे आया हूँ, अमीर शाह नकवी ने मुझे कहा कि मेरा कंटेनर, मेरा ट्रक किया हुआ है, और खान वहां पहुंचे, उन्होंने बकायदा इमरान महबूब को फोन किया कि शफाकत खान आ रहा है, और शफाकत खान को तकलीफ करने देना।
नकवी साहब का जो था ये ट्रक था
जी, मुझे अमीर नकवी शाह, अमीर नकवी ना ट्रक भी ना अमीर नकवी ने भेजा, और अमीर नकवी ने ये भी फोन करके बताया इनको कि शफाकत खान आ रहा है पाकिस्तान से, और वो पहुंच आया है, मैंने सुबह जाके
जर्नल है
जी, जनरल सेक्रेटरी है जी, उन्होंने कहा ना वो मौजूदा हाजिर जनरल सेक्रेटरी है जी, पीटीआई की हुकूमत गई, जनरल सेक्रेटरी की हुकूमत नहीं गई, इमरान महबूब प्रेसिडेंट है इस वक्त, जब तक इमरान खान ने उसको कंडेम नहीं किया, उस वक्त तक उमर रियाज नायब सदर है, उसको मानना पड़ेगा कि उमर रियाज सदर है, मानना पड़ेगा कि जनरल सेक्रेटरी जो है इस वक्त अमीर मुख्तार है, और ये मानना पड़ेगा कि ये जो अहदेदारान है ये हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि मुझे वो अहदा दें या मुझे इज्जत दें, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरी तरह एक भी ज्याला है, मैं ये मानता हूं कि मैं डेनमार्क के अंदर सिर्फ इमरान खान का नजरियाती एक ही ज्याला हूं। बाकी मैं भाई ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग थे सबका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरान खान के लिए लोग निकले। अगर हम कहें ना जी शफाकत खान के लिए निकले हैं, या इमरान महबूब के लिए निकले हैं, या आतिफ के लिए निकले हैं, ये किसी के लिए नहीं निकले लोग, ये सिर्फ इमरान खान के लिए निकले हैं, इमरान खान के साथ लोगों को प्यार है, पाकिस्तान के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की सलमियत के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की
बहुत सारे गैर जन्मदार लोग भी निकले हैं
जी। बिल्कुल 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 ऐसी बात
खान
है
साहब, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ डायरेक्ट लाइव ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान से कोई पोस्ट मिली है, कोई जिम्मेदारी मिली है
जी। इंशाल्लाह मैं छोड़ा नहीं हूँ जी, बताऊँ बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कि मुझे हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता, लेकिन हो सकता है ये मलंग अनपढ़ आदमी पूरे यूरोप का जो है ना सीनियर वाइस नहीं सीनियर सदर होगा, प्रेसिडेंट होगा, और ये मुंतखब करेगा कि किसको किस किस को अहदे दिए जाएं और किस किस को चुना जाए, ये अनकरीब ऐलान होगा जब वहां से, तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ मुझे मालूम नहीं कैसे हो, लेकिन ये बात जरूर हुई है
मेरे पास इन्फॉर्मेशन है
जी यूरोप से जी, मुझे ये तकरीबन चांसेस हैं कि मैं पूरे यूरोप की नुमाइंदगी करूंगा जी, और मैं मुंतखब करूंगा कि कौन बंदा मुखलिस है और किस बंदे को सदर बनना चाहिए, कितनी टाइम के लिए बनना चाहिए, और फिर हालात देखेंगे, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मसलन स्वीडन की है तो वहां जाकर करूंगा कि किस बंदे पे लोग एतमाद करते हैं, किस से लोग खुश हैं, और कौन बंदा पार्टी के लिए मुखलिस हो सकता है।
खान साहब मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई नई पार्टी, कोई नए लोग जो मुखलिस लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं पीटीआई के, वो जमात बना रहे हैं आप।
ये खान साहब की जो, खान साहब ने तो नहीं कहा कि ऐलान कर दिया है जी कि माजी से हमसे गलतियां हुई हैं जी, खान साहब ने तो ऐलान कर दिया है ना जी कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, और उसके अलावा जो है जो गलतियां हुई उनसे हमने सबक सीखना है, खान साहब ने ये कहा हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है, मैं खुद उनके पास सुन के ये अल्फाज आए हैं जी इस्लामाबाद से, और उन्होंने ये कहा कि माजी में गलतियां हुई हैं और उन गलतियों से हमने सबक सीखना है, हम जो भी अभी मुंतखब लोग करेंगे, हम सोच समझ के और ईमानदारी से और उनको अच्छी तरह धोकर जांच कर हम उन लोगों को सामने लाएंगे, ये बात भी दुरुस्त है जी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अमीर शाह नकवी जो है वो बहुत एक मकाम रखते हैं, क्योंकि उनकी मैंने खुफिया मुलाकातें भी करवाई हैं, वजीर आला से भी करवाई हैं जी, और भी उनकी मैंने करवाई है जी, खुफिया मुलाकातें उनकी काफी हुई हैं, जहाँ पर हमने कोई पिक्चर नहीं भी बनाए हैं, और कुछ और इदारे हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं जी, जो हमारे कीमती इदारे हैं उनसे भी मुलाकातें उनकी हुई हैं जी।
सैयद मुख्तार नकवी साहब बड़ा काम करते रहे, हमने उनको फॉलो किया, आपको भी फॉलो किया, ये खान साहब मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है
काफी सारा जी। बिल्कुल हमने काम वहाँ किया है जी, मैं जब से गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मस्कीन सा आदमी हूँ, यहाँ आप लोगों को पता है दरवेश आदमी हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी अर्श कभी फर्श। तेरी उन्हें कहते हैं गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अर्श कभी फर्श। कभी किधर होते हैं जी, कभी किधर होते हैं, कभी लोगों की नजरों में गिरे होते हैं, कभी आसमान पे होते हैं जी। हम तो चाहते हैं जी अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम करें जी, लोगों की खिदमत करें, लोगों के साथ प्यार करें, लोगों के साथ मोहब्बत करें, और लोगों को अपने से ऊपर समझें। जिस दिन हमने दूसरे को अपने से ऊंचा समझना शुरू कर दिया जी, अल्लाह की कसम हम दुनिया की अजीम कौम बन जाएंगे।
खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ